अमीन। सद्धया सद्धासे उपेता स्थिता उपेयान कर्मफल विन्दते सुख भुक्ता है। अंजसा सर्वता से अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वह व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। तात्पर्य, वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण करें। महाजन जेनो कतः सपन्था, इस प्रकार हम आपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन की भी सुधार कर सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है एक अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त निर्णय करते हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज तक नियम बनाते हैं और कल उसे सब निरस्त कर देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है तो अगले क्षण दूसरे दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। वह चर्बित चर्बण विधि पुनः पुनः चर्बित चर्बणा नाम मानव समाज को कभी सुख नहीं बना सकती। मानव समाज को सुखी तथा प्रसन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्श विधियों का स्वीकार करना होगा। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साक्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावकृतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानतम स नमोम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भागवत में जो प्रसंग आजकल आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये पृथ्वी महाराज जब माता पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हुए और उसके पीछा की, तो माता पृथ्वी ने भय के मारे गोरूप धारण की और भाग रही थी। भागते भागते जब किसी प्रकार उनको सहायता नहीं मिला, वो देखा कि पृथ्वी महाराज का हाथ से बचना असंभव है, तो आसन्न मृत्यु को देख करके अब उन्होंने बोला कि और तो कुछ उपाय नहीं है, तो उनको बताना पड़ेगा, भाग कर कहां जाऊं, उनसे भाग करके कहीं जगह नहीं मैं जहां रुक सकती हूं। तो अभी इस भय के परिणाम बसत, भय के परिणाम से उन्होंने किस कारण से अन्न नहीं दे रही है और क्या करने से अन्न प्राप्त हो सकता है, ये सब उपाय खोलकर बताती है। वो पहले बता सकती थी लेकिन नहीं, यही है हम लोग का बद्ध जीव का दोष। इसीलिए तो हम संसार में भेजा गया, भगवान ने दिए भौतिक संसार इसलिए बना। अगर आसान से हम मान लेते तब इतने लात खाने का क्या जरूरत है। बिना दंड में हमारा बुद्धि ठिकाने में नहीं आएगा। तो पृथ्वी महाराज ने जब ये पता चल गया उनको, तो पृथ्वी को दंड देने के लिए मारने के लिए उद्यत थे, उनके पीछा किए, तो उन्होंने बचने के लिए सबसे पहले तो भागी, मतलब भाग कर कहां जाऊं, ऐसे रूप बना लूं ताकि उनको दया आ जाएगा, तो गो की रूप बना ली, राजा है तो गाय को गोबद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पृथ्वी महाराज बोले तो कुछ भी कपट गो रूप तो थोड़ी छोड़ेंगे, तो उनको पीछा किए, बोले तुझे मार के टुकड़ा कर दूंगा। तब देखा कि और किसी प्रकार में उपाय नहीं बचने का, तब अंत में फिर स्तुति करने लगा। आप ऐसे है ऐसे स्तुति करने पर भी पृथ्वी महाराज बोले हम नहीं सुनने वाले, तो कुछ भी बोलो। तो बोला कि कोई उपाय काम नहीं करता, तो फिर अंत में रहस्य उन्मोचन कर देना। अब क्या मरने से पहले जो वैसे खोल देना चाहिए। तब खोल रही अपने बात को, बोले आप जो कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय में नाना प्रकार के अन्न बीज औषधि सब उत्पन्न किए थे, हाँ मुझे भी उत्पन्न किए और बीज भी उत्पन्न किए जिसमें प्राणियों का पोषण हो सकता है, लेकिन अब कारण बता रहे कि क्यों मैंने उसको छुपा लिया। आगे बताएंगे इस कारण को कि अभक्त लोग और जो असुर प्रकृति के लोग, वो लोग इस प्रकार बीज को उपभोग करते हैं जिस अन्न और बीज का उपयोग केवल भगवान की प्रसन्नता यज्ञ कार्य के लिए होना चाहिए, उसको दुरुपयोग करते हैं और मुझे कोई कदर नहीं करते, इसी कारण से मैं उनको छिपा लिया अपने। अभी आगे कारण बताएगी। और ये पहले क्यों छिपाया हुई बात तू बाद में बताएगी, पहले अभी ये श्लोक में बता रही है कि मुझे मार देने से क्या फायदा मिलेगा। मैं मानती हूं आपके सामने टिक नहीं सकता, आप मुझे मार देंगे, मार देने से आप प्रजा पालन के लिए जो अन्न आदि चाहते हैं कहां से मिलेगा। तो इसलिए सही बात तो ये है, आप अगर सचमुच प्रजा पोषण करना चाहते हैं तो उपाय कीजिए। उपाय सब शास्त्र में बताया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनियों ने पहले से अलग अलग समस्या के लिए निदान उन्होंने निश्चित करके रखे हैं। अगर किसी समय में दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ता है, अन्नाभाव होता है, किसी प्रकार की समस्या आता है, उसको कैसे सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो शास्त्रोचित उपाय को अवलंबन करना चाहिए। आप मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए ये श्लोक में बोलते हैं, पृथ्वी मूर्ति बोलती है कि तान अतिष्ठति यह सम्यक उपायं पूर्वदर्शिता। पूर्व में बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि जैसे उपाय बता गए हैं, इसी उपाय को आप पालन कीजिए। ये थोड़ी की मार देना चाहते, लेकिन उनको पता नहीं महाराज पृथ्वी कोई कम नहीं है, वो बिल्कुल समझदार है, भगवत अवतार है, वो बिल्कुल उपायन पूर्वदर्शिता को भी करते ही है। क्या उपाय पूर्वदर्शिता है कि महापुरुष कहते हैं कोई बदमाश लोग जब काम नहीं मानता, अपना बुद्धि छिपा कर करता है, तो दंड ही एकमात्र उपाय है, भय के मारे वो काम करेगा। तो यही करना चाहते हो, तुम्हारा जानते मारने से काम नहीं बनेगा, लेकिन जब तक वो नाश नहीं देगी तब तक उसको करना पड़ेगा इसका। तो ये तो असली उपाय तो तुम्हारा जन कर रही है, लेकिन वो बेचारा वो स्वयं नहीं कर रही थी उपाय। अरे भाई तू पहले बता देता कि ऐसे ऐसे करो, और मैं इसलिए अन्न छिपा लिया था, और आप आदर्श राजा है और आप इस प्रकार से उपाय करके अन्न निकाल लीजिए, लेकिन नहीं बता। तो जब अभी इस प्रकार की स्थिति आ गई तब उपदेश देना, उपदेश के द्वारा बताती है महाराज को कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जो उपाय कर गए हैं समस्या के समाधान के लिए, आप इसको क्यों नहीं पालन करते। अगर इस उपाय को कोई पालन करे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो समाज के लिए प्रत्येक प्राणी के लिए हितकारी मंगल के लिए जो विधान बना गए हैं उसको अगर ठीक ठीक से कोई पालन करे, यह लोक परलोक दोनों लोक में सुखी होगा। अगर उसको उपाय को पालन नहीं करेगा तो मार डालेगा, खत्म कर देगा उसको, तो ना अभी खुशी होगा ना बाद में सुख होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तीसरी बात को अभी बुद्धि आने के बाद ये बात कहती है, ये बुद्धि आया कैसे, ये उपाय किए पृथ्वी महाराज तब तो तू अभी कह रही है ये उपाय तो पहले किए प्रदर्शित उपाय है, नहीं तो कोई भी बिना डर के मारे कोई अपना काम ठीक से नहीं करेगा। ये बद्ध जीव का एक स्वाभाविक गुण है। भगवान भागवत में यहां तक कहते हैं मद भयं बाती वायु, ये जो वायु प्रचलन होता है भगवान को तो मेरे डर के मारे ओ वर्षा भी जो इंद्र ने बारिश कर रहा है वो भगवान को डर के मारे। मद भयाति तपति सूर्य, सूर्य जो गर्मी देता है तपति, वो भी उनके सब फिटिंग है ना। नहीं हम लोग तो इलेक्ट्रिक बिल ये सब फिट फाट करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करके बिल भी पेमेंट करते हैं टाइम पर, तब भी कनेक्शन आउट हो जाता है, लोड सेटिंग हो जाता है। लेकिन भगवान ने ना तो कोई डिपोजिट किए, ना तो कोई वायरिंग किए, ना होल्डर बल्ब, ना इलेक्ट्रिशियन, नथिंग। बल्ब बोल दे तो लाइट देना है, कैसे देना क्या करना तेरे डिपार्टमेंट, नहीं तो मैं बस बेचारा को 24 आवर्स 365 दिन ना जाने जब तक भगवान की नजर पड़े तब तक डर के मारे कर रहे, बिल्कुल अप टू डेट, कोई गड़बड़ी नहीं कुछ नहीं। ये सारे सरकारी जो अव्यवस्था हो रहा है पोषण, ये सब केवल भय नहीं है। एक पृथ्वी महाराज जैसे कोई सरकार आ जाए, ऐसे राजा आ जाए जो बहुत समर्थवान हो, सबल हो, तो सभी को इस भावित करके तो ठीक ठाक परफेक्ट चलेगा सब, कोई इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन भाई खत्म हो गया, चोर उच्चके से बढ़ गए, किसी को डर नहीं तो कैसे करे। ये संपूर्ण जगत चराचर जगत भी भर भय के मारे चलता है। भगवान कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये संपूर्ण प्रकृति चराचर जगत कैसे ठीक ठाक काम कर रहा है, मेरी अध्यक्षता के। अध्यक्षता का एक तो आप करेंगे कि अंडर माय सुपरिटेंडेंस, मैं उसका अध्यक्ष हूं, लेकिन अध्यक्ष का एक अर्थ है अधिकार पूर्वक आंख रखना, अधि अक्षत है ना। नहीं अधि अक्षत मैं आंख रखा हूं क्योंकि मैं अधिकारी हूं। आप देखेंगे आप सब नाना प्रकार काम करते हैं, श्रमिक लोग लेबर लोग लगा देते हैं काम करने के लिए, अगर जो सुपरवाइजर है वो नहीं रहे तो करेंगे काम तुरंत, खाली देखते रहे ना गया तो बैठ गए बस बैठे बात करेंगे, अरे ये दे रहा है देर से मजदूर है तो काम कर लो, नहीं करेंगे। कोई उनको देखने वाला हो अगर वो फिर देखने वाला थर्ड क्लास हम जैसे देखने वाला नहीं करेंगे, जो उनको पेमेंट दे जो उनका अधिकारी है अगर वो उनका नजर पड़े जब तक वो नजर रखे तब तक ठीक ठाक करते रहेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे ना। वो देख रहा है वो हमेशा उनको देख रहे हैं, वो देखता है जब तक देखता है नजर है तब तक और डर के मारे करेंगे सर ठीक ठाक, नहीं तो काट देंगे। ये बहुत आवश्यकता है, ईमानदारी तो यही है कि मैं दे दिया कि तुम इतना काम इतना करो, नहीं वो नहीं करेगा, सब ईमान कोई नहीं, तो इसलिए नजर रखना पड़ता है। किसी को नजर रखना पड़ेगा, दूसरे किसी की नजर में काम नहीं चलेगा। कोई अधिकारी व्यक्ति हो जो उनको अपना अधिकार में रखता है उनसी का नजर पड़े तो काम तो करेगा ही, बिल्कुल कोई उसमें कसर नहीं छोड़े। तो इसलिए भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण, मेरा द्वारा अध्यक्षता क्या है ना, मैं अधिकारी हूं, इस बात को ही जानते हैं अच्छी तरह से। भगवान ही अधिकार है, हम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते, भोक्ता भगवान ही भोक्ता है, सब जगह का सब प्रकार से मालिक वही है, इसी बात को सब जानते हैं। अब भगवान कहाँ है, अभी हम लोग की बदमाशी करते हैं क्योंकि भगवान पता है मूर्ति के रूप में है, थोड़ी कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं। अगर सचमुच हमको महसूस हो जाए कि नजर हमारे ऊपर पड़ा है और डंडा मार रहे, सचमुच हम डंडा खा भी रहे ऐसा नहीं, लेकिन हमारा बोकामी यही है कि हम उनको सामने देख नहीं पाते, अधिकारी व्यक्ति को लेखनी को हमारा नजर रखा क्या सही में, ये हमको महसूस नहीं हो। अगर महसूस हो जाए हम भी बिल्कुल पक्के काम करें ना, आलसी छूट जाए। और ऐसा नहीं है कि उनका नजर हट नहीं है, नजर है बराबर। और हम जो बदमाशी कर रहे हैं उसका दंड भी हमको खा रहे हैं, दंड मिल रहा है, लेकिन इतने अबोध इतने अज्ञान है, इस अबोध जात सभी जन्म से इतने कोरा अज्ञान है, खूब डंडा पड़ रहा है, खूब दंड भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई डंडा मार रहा है वही, वो देख रहा है कि तू बदमाशी कर रहा है इसलिए डंडा पड़ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इतने समझ में आ जाना यही होता है, क्या होता है, यही रियलाइजेशन हो जाए तब तो फिर हमारा बुद्धि वृत्ति आचार व्यवहार बोली चाली सब दूसरी प्रकार हो जाए, सब बिल्कुल तत्क्षणात बदल जाए। ये रियलाइज हो जाए तब हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी प्रकार के नाना प्रकार उदाहरण जरा समझा रहा है, जा रहा है। भगवान नजर, भगवान कहते हैं ईशा अवश्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत्याम जगत, ये संपूर्ण चराचर जगत में जो भी कुछ है सबका मालिक कौन है, कोई और है, ईश्वर है। लेकिन हम तो पता नहीं, पहले तो एकर के हिसाब से बोलते थे, फिर एकर से थोड़ा और डिसमिल गुंट क्या क्या किए, फिर मीटर गज में आया, आजकल तो फुट बड़े बड़े सिटी में फुट के नीचे इंच फिंच को आ गए पता नहीं, इस हिसाब से आ गए गिनती पूरा। अरे भाई जमीन तुम बनाया था क्या, ना तेरे बाप ने बनाया था, भूसी के ऊपर क्या क्या मेरा है तुम कैसे ले सकता, इतना भी नहीं देगा 2 इंच सेंटीमीटर उसके ऊपर, बिल्कुल मूर्खता, कोरा मूर्खता। अब जानते हैं इस जमीन में ही देख करके बोलता होगा कि भाई तू मेरे ऊपर मालिकाना इतने झगड़ता है, तेरे जैसे तो मैं कईयों को देख चुका करते करते गए, मैं तो किसी का भी नहीं हुआ है, तो फिर क्यों आकर इतना मर रहा है, वो हंस रहा है लेकिन हम मर रहे, यही था क्या नहीं समझा। तो अगर केवल इतना ही समझ में आ जाए कि सब कुछ का मालिक भगवान कृष्ण है, वो कृपा करके हमको दिए हैं, हम भगवान के सेवक है, भगवान के सेवा करके उनको प्रसन्न करने के लिए हमारा आवश्यकता के लिए रखने बिखरने के लिए सारे संपत्ति दिए, सारे सुविधा दिए हैं, इस सुविधा को हम इतने तक यूज करें, उपभोग करें ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। और भगवान भगवान की सेवा तो बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता, हम अपनी सेवा रही, अपनी सेवा तो जितना खाओ इतने भी खाओ, नहीं और रखूंगा, मरते दम तक खाऊंगा, मरने के बाद भी क्या होगा तब पता नहीं, लेकिन तब भी रखूंगा, वो जो तब भी करूंगा, पता नहीं कितने कितने लोग प्रचंड लोग, जितना आवश्यक इतना भी ले लो, नहीं इतने भी संतुष्ट कभी नहीं, ये भी हमारा आदत है। तो इसलिए है बहुत आवश्यकता दंड। तो अभी पृथ्वी महाराज का ये दंड कार्यक्रम के वजह से माता पृथ्वी ने आपने आप बता रही है कि अरे पहले पहले बड़े बड़े महापुरुष लोग से जो बताए गए हैं इस उपाय को अपनाए ना, मुझे मार क्यों रहे, मुझे पीछे क्यों पड़े, अरे ये तो कर रहा हूं मैं, महापुरुष जो लोग कह के गए मैं तो कर रहा हूं, तभी अभी रास्ता में आ रहा है। तो अन्न नहीं मिल रहा है, भगवान कहते हैं अन्नाद भवंती भूतानी परजनात अन्न संभव जज्ञात भवति परजन्य तस्मात यज्ञ कर्म संभव, है ना, तो इसलिए यज्ञ करो, ये चक्र है, एक चक्र है, एक बाद उसे बिल्कुल चल रहा है ऊपर नीचे सब। आप को सृष्टि किया गया, सुविधा दिया गया, अब यज्ञ करो, यज्ञ करके देवताओं कृष्ण को प्रसन्न करो, और यज्ञ के फल से वर्षा होगा, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से प्राणी पशु हो, एक की बात से चल। और आप यज्ञ नहीं करना चाहते हैं, यज्ञ के अर्थ क्या है, यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधन, यज्ञ अर्थ में कर्म करना चाहिए, यज्ञ भाई विष्णु हो, यज्ञ पुरुष विष्णु है, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता तो नहीं करते, विष्णु को डिलीट कर देते, उसके हमको बैठा देते हैं, हमारा प्रसन्नता के लिए करेंगे। अर्जुन प्रसन्न हो कैसे सकता है? हम यही अब भगवान को सर्व जानते नहीं, हम जान नहीं सकते। अरे भगवान को नहीं जान पाएंगे, तुम क्षुद्र जीव हो तो कम से कम जब होल को नहीं जाना तो सैंपल को तो जानो। हम जितने बैठे हैं इधर सब भगवान के सैंपल है, तो आपने आपको जानो, सैंपल को देख लो तो भगवान पता चल जाएंगे भगवान क्या बोलते हैं। आपने आपको नहीं जानते, आपने आपको जान जाने से ही समस्या समाधान हो जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन सुकृत आत्म साक्षात्कार, आपने आपको जान ले, क्योंकि आप ही भगवान के सैंपल अंश है। अंश होने के नाते आपका जो धर्म है, जो कर्म है, वो अगर करे तो आप भी खुश हो जाए। कभी कभी आप जल्दी से आए मंदिर में आते समय फटाफट लेट में उठे, फटाफट आ गए तिलक करके, लेकिन भूल गए हो तिलक का बिंदी लगाने के लिए। अरे ऐना से देखती कोई बुला, अरे तू छूट गया तिलक पूरा नहीं किया। अच्छा ऐसा क्या, जाकर ऐना में देख ली बड़े ऐना में, अरे वाला तिलक छूट गया, फटाफट जल्दी से करना है तिलक लेकर ऐना में जहां दिखा नहीं उंगली लगा रहे, कहां पे लगा रहे, ऐना में लगा रहे, लग नहीं पूरा लगा रहे, लग नहीं रहा, और जोर से लगाएंगे वो शीशा टूट जाएगा, हाथ कट जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा। अरे यही कमी से लग क्यों नहीं रहा, अच्छा तरह से लेकर लगा तब भी नहीं लग रहा, कैसे लगेगा? हम लोग सब क्या है, छाया, काया तो और कहीं, हम लोग सब अंग है, अंश है। जहां पर लगाने से यहां दिखाई पड़ेगा वहां तो लगाते नहीं। जिनको प्रसन्न करने से हम प्रसन्न होंगे, जिनको खुश करने से हम भी खुश होंगे, ये उपाय तो पता नहीं, ये पूर्वदर्शित उपाय पहले महापुरुषगण ये कह रहे हैं। अगर तुम प्रसन्न होना चाहते हो तो ये अवस्था उपाय करो, अगर तुम तंदुरुस्त होना चाहते हो तो बढ़िया बढ़िया जो भोजन वो पेट में डालो। हम पेट में कौन डालेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, हाथ बोल गया मैं खाऊं, पकड़ कर रखो मरो, कैसे हो सकता, ये उपाय नहीं है। उपाय तो निश्चित किया गया है, इसमें डालना है, और ये उपाय को फॉलो ना करके आप अपनी मनमानी कुछ भी कर ले कैसे संतुष्ट कर सकते, प्रसन्न हो नहीं सकते, सवाल ही नहीं। तो इसलिए अभी धरती माता जो बता रही है कि पहले महापुरुष लोग, ऋषि लोग जो जगत के हितकारी है, जो आपको जानते हैं, तो वैसे ऐसे नियम बना कर गए, उस नियम को पालन करके आप कर सकते हैं। अब वही करेंगे पृथ्वी महाराज, सचमुच पृथ्वी ने सर बताई, पूरा नहीं बताई, क्यों अपने अन्न छिपाई, क्या करने से अन्न निकलेगा, सब बता देंगे। तो मुख्य बात यही है कि हम लोग सभी सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि क्या उपाय करने से हम प्रसन्न हो पाएंगे, सुखी हो पाएंगे। सब गलत तरीका से करने का, सब सबसे पहले तो कोई हम मरना नहीं चाहते, मरना कोई चाहता है? नो बड़ी, मरना नहीं चाहता है, अमर होना चाहता है, और कहां पे ही बात कर चाह रहे हैं मरन, बिना मरे मरने का जगह पर आकर, ये जो दुनिया में रहते हैं उसका नाम क्या है, मृत्यु लोग। मृत्यु लोग में काम तो एक ही होता है, क्या होता है, मरना ही होता है। हम किस लिए जी रहे हैं, मरने के लिए, किस लिए खा रहे हैं, किस लिए सो रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट तो ही है ना, फाइनल वही है, उसी के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन बोले हम मरना नहीं चाहते। अरे बेवकूफ, तुझे मरना नहीं है तो मृत्यु लोग में क्यों आया, दूसरे घर में जाता, दूसरी जगह पर। और केवल मरना नहीं चाहते, नहीं सुखी होना चाहते, सुखी होने करके जीना चाहते, दोनों काम नहीं। यहां तो खा ले भाई, यहां तुझे सुख भी नहीं मिलेगा और तू जी भी नहीं सकता। हमारा ही दोनों इच्छा, क्या इच्छा है, जी के रहे और सुखी रहे, और दो काम इधर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल रंग एड्रेस में है, टोटली रंग गलत पता में आ चुका। अगर हमको सुखी होना चाहिए और जीना चाहिए तो दूसरी एड्रेस है, वहां जाओ जहां पर मृत्यु होता ही नहीं, जहां पर दुख होता ही नहीं। इस जगह पर जाना था, कैसे जाऊं तो पता लगा उपाय पूर्वदर्शित ही पहले पहले बता गया, भगवान खुद बताते हैं शास्त्र में, जब गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ऐसे ऐसे जगह है जहां निवर्तन होता नहीं है, जा एक बार जाओ बस मस्ती में रहो, ऐसे जाएगा। तो ये सब उपायन जो सब भगवान के द्वारा शास्त्र में ऋषि मुनियों के द्वारा सब दिया गया है, उसको अगर हम पालन नहीं करेंगे और अपने मनमानी करते रहेंगे तो कैसे हो सकता है? सब तोड़ फोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर डाले, जैसे कुछ कुछ प्रभुपाद जी ने आजकल की सरकार की बात की तुलना दिए हैं पृथ्वी महाराज के साथ, ये राजा लोग हैं। और राजा लोग को तो किसी ना उपाय, किसी को पता नहीं, कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने सनक से बहुत विचार करके विमर्श करके और बनाते हैं, हम सुखी का योजना बनाते हैं, ऐसे सुख हो जाएंगे, सपना खूब देखते हैं। रात को नहीं, दिन में ही, दिन में सारे जाकर तो बैठ करके मीटिंग करके खूब सपना देखते हैं, लिखा पढ़ी भी करते हैं, सपना लिखा पढ़ी करके पास करते हैं सारे, बिल्कुल वोट देकर पास करते हैं। बिन सबरसीय योजना, क्या योजना, ऐसे सुखी हो जाएंगे इसे करके, क्या बताओ, स्वर्ग को फेल मार देंगे। और वो योजना तो पूरा नहीं होता, 20 साल में पूरा वही पूरा हो जाते हैं, उनका पूर्ण हो जाता है ना, समय पूरा होता है ना योजना पूरा होता है, और हम उसको सुनने वाले मानने वाले हम भी पूरा हो जाते हैं, योजना ऐसे रह जाता है ऐसे। और ये सरकार ये योजना बनाया, दूसरी सरकार आएगा बोलगा नहीं ये गलत है, हम दूसरी योजना करें। आप लोग कैसे हो सकता है, सारे देशवासी और देश सारे दुखी। उसका मुख्य कारण है क्योंकि उपायन पूर्वदर्शित है, जो जो महापुरुष लोग जो करके गए हैं, जो उपाय बतला के गए हैं, उस उपाय को हम पालन नहीं करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता, हम कर नहीं सकते। वही विधि है, वही विधि के अनुसार ही आप सुखी हो सकते हैं। सुख का विधि ये है, वो नहीं करेंगे दुखी होंगे, लेकिन हम दोनों को नहीं मानते। कोई भी वस्तु बाजार से खरीदने जाओ और उसके साथ में एक कागज मिलता है, यूजर गाइड, वो जो कागज मिलता है यूज को, तो उसको पढ़ो तो वस्तु कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, उसमें लिखा रहता है, उसको पढ़ के फिर इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो वस्तु बिगड़ जाएगा, तो फिर कैसे होगा? तो इसी प्रकार भगवान ने जो सृष्टि दी है हमको, वो भी खाली नहीं दिए, वो भी उसके साथ यूजर गाइड दिए हैं, एक मैनुअल दिए हैं कि किस प्रकार इस सृष्टि में रहना होगा, किस प्रकार व्यवहार करना होगा, किस प्रकार उसको यूज करना होगा, वो दिए हैं। वो है गीता भागवत शास्त्र है, भगवत वाणी है, उसको तो हम पढ़ते नहीं और जीना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो कैसे नहीं हो सकता, तो संभव ही नहीं है। तो भगवान सभी जगह में कहते हैं और उनके भक्त लोग भी कहते हैं, सारे आचार्य महापुरुष कहते हैं, जितने सारे प्राणी, जितने सारे संपत्ति, जो भी सारे समन है सारे संसार में जगत में, सभी कुछ का उपयोग केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, सीधा सीधा आदर है, उसी के लिए करो, सब सुखी होंगे, भगवान भी सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगे, सब सुख में रहेंगे। और वो ना करके स्कूल का सब अपना समय में लगाएंगे तो कैसे हो सकता है? एक देश में एक राजा थे, तो मुगल शासन था, वो राजा का नाम था असफ दौला। तो उन्होंने, मुसलमान राजा थे, मुसलमान राजा को तो धर्म ही था, क्या धर्म मालूम है, उनका धर्म का सार एक ही है, जो अलग धर्म वाले उनको कैसे भी करके मारपीट करके धर्म चेंज करा देना, यही हमारा, हम पूरे धर्म पालन करते हैं, कितना पालन किया हमने, इतने बदलाया, मारपीट करके धमकी देकर ये पूरा धर्म पालन किया, बस यही एक ही धर्म होता है, तो यही धर्म को खूब पालन करते थे वो लोग कैसे भी तरह से, तो उस धर्म को पालन करते थे। तो उनके राज्य में एक साधु था, वो तो नहीं बना, कितने उसको प्रयास किए बदलाने के लिए, उसका सारे संपत्ति छीन लिए, सब कुछ कर लिए, वो भिखारी होकर डोलने लगा, तब भी बोला मैं नहीं मानू, जिसे हरिदास ठाकुर थे, बोले ठीक है भाई, तू कृष्ण कहो चाहे अल्लाह कहो, है तो वही ऊपर वाला, तो बोला अरे ऊपर वाला कोई नहीं, मैं हूं। असफ दौला बोला मैं हूं, जो कुछ मैं सब कुछ मेरे राज्य में मैं सब खिलाता पिलाता, मैं तो राजा हूं। तो एक दूसरे उनके साधु बना कॉम्पिटेंट, वो बोला दोनों ही हुए, वो हमेशा बाजार में नारा देकर बोलता था कि जो देगा असफ दौला, क्या देगा तेरा ऊपर वाला, राजा असफ दौला वो जो देगा, देखो हम किसे थर्ड साहब बैठ कर खा रहे, सारे बाजार में ऐसे हल्ला करके बोलता था सबको। वो साधु बेचारा डरता नहीं था, बोलता था मैं क्यों डरू भाई, तेरा शब्द लगा जो देगा ऊपर वाला, तेरा शब्द क्या देगा, तेरा शब्द लगा, वो क्या देगा। और वो आपस में उनका बड़े भीड़ भाड़ हो गया, कई हाट में घाट में बाजार में खूब भीड़ हो गया, दोनों दोनों का खूब कंपटीशन हो गया। अब जाकर के लोग जो भी वो जाकर खूब कंप्लेन किया, राजा साहब ये तो आपका बहुत इज्जत खराब कर रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है भाई, तू उनको नहीं मानना है तो चुपचाप करो, अरे आपको बदनामी कर रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो राजा ने दोनों को बुलाया, बोला ऐसे क्यों बोल रहा है, इनको पूरा सब छीन लिया फिर भी वो मानता नहीं, जो देगा ऊपर वाला। तो उसको बोला क्यों बोलता तूने, ना मैं यही बोलता हूँ आपका सामने बोलता हूँ, जो देगा ऊपर वाला, तू क्या देगा असल दबा। गुस्सा हो गया, उनको बोला तो बोला अरे सबका सामने दूसरा जो पकड़ता बोलता है कि जो देंगे असल दबा क्या देगा तेरा ऊपर वाला क्या देता है। तो भिखारी बोलता देखो मैं कैसा रहता हूँ फ्लाट में फर्स्ट क्लास। तो राजा को असमझ हो गया, बोलता क्यों है, बोला मैं परीक्षा करूंगा आप दोनों क्या सही है, सच में ऊपर वाला है क्या। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कुछ उपाय उन्होंने सोचा, दरबार में दोनों को बुला करके बोला ऐसा करो 15 दिन के बाद मैं आप दोनों को बुलाऊंगा। तो दोनों को बुलाकर दोनों को छोड़ दिया, और सामने छोड़ने से पहले अनाउंस किया पूरा राज्य में, ये जो साधु है जो मुझे नहीं मान रहा है कि ऊपर वाला कर रहा है, उसको कोई भीख भी नहीं देना, ना मैं देखता हूं क्या कहता है, उसको कुछ नहीं देना, कोई सहायता नहीं करना, उस सारे संपत्ति तो पहले क्रोक हो चुका है, अभी कुछ नहीं, आप देखते हैं कुटिया में बैठकर क्या करेगा। और उसको भी बोला उसको भी कुछ नहीं देना, किसको, फकीर को भी, फकीर को भी उनका तरफ से जो देता था बोला तुझे भी नहीं दूंगा 15 दिन, दोनों नहीं देखता हूं, देखता हूं, लेकिन फकीर को तो कुछ दूंगा, वो मेरा नाम गान करता है तो कुछ छिपा कर उसको कुछ दूंगा, क्या दूंगा। तो उनका मन में डिसाइड किया उनको एक सोने की मोहर प्रतिदिन दूंगा, लेकिन सामने नहीं। वो एक उपाय क्या क्या है, बहुत बड़ा कलिंदर तरबूज पता ना, अफगानिस्तान से मंगाया था, बढ़िया सा सुपर क्वालिटी का तरबूज मंगा करके उसको थोड़ा छेद करके उसके अंदर एक गोल्ड मोहर, प्योर सोने की मोहर उसके अंदर फंसा दिया, और कोई दिखाने की तरबूज में कुछ कटापटा है। तो उसको बुलाया, बोला वो तो जाओ अनाउंस कर दिया, कोई उसकी सहायता नहीं करेंगे, भीख भी नहीं देंगे, और फकीर को बोला तू मेरे निवास में रेसिडेंट से मिलना मुझे। तो खुश हो गया, मुझे बहुत इनाम मिलेगा, बड़ा खूब सुख में फूल गया था। और उन्हें गया, सब जाने के बाद दरबार मिट गया, उनके घर में गया राजा के निवास में, राजा उनको बुलाए हो तो उनको बहुत प्रशंसा किया, राजा ने इतने बड़े तरबूज उठा के दिया, वहीं से गाली देना शुरू कर दिया, अरे बेकार राजा तरबूज तो मैं फलाहार थोड़ी करूंगा, मैं एकादशी थोड़ी करता हूँ, मैं तुम्हारे धर्म में आ गया, अब रथ फल छोड़ दिया, मैं फलाहार करने के फल दे दिया, अरे कुछ देता धन रत्न कुछ नहीं दिया, ये किया वहीं से, लेकिन सामने बोल नहीं सकता, मन में खूब गाली देने लगा, लेकिन तरबूज लेकर गाली देते देते लेकर आया, बोला क्या तरबूज खाऊंगा, लेकर के दे दिया मुझे तरबूज। और वो बोला क्या इतने बड़े तरबूज में, तरबूज तो नहीं खाना मुझे। बाहर निकल कर देखा एक रेडी वाला बैठा था फल दुकान, बोला भाई तरबूज लेगा क्या, अरे तरबूज आजकल रेट बहुत डाउन है, क्या तरबूज खरीदना, ना भाई ले लो सस्ता में ले ले, 8-10 किलो का तरबूज बहुत बड़ा सा है ले लो। बोला क्या रेट चल रहा, ना 5 रुपया किलो। देखा बोले 50 रुपया का तरबूज हो रहा है, बोला यार आधा दे दो 25 रुपया, नहीं नहीं लूंगा, और आधा कर दो 10 रुपया दे दो, नहीं चलो 5 रुपया तो दे दो, बोला 5 रुपया दे देगा, फलवार बोले सर 5 रुपया तो बहुत ही कम है, तो 5 रुपया दे के खरीद लिया, ओ नहीं खरीदा, वो देखा कि बोला कटा हुआ है, बोला फटा तरबूज है रिजेक्ट कोई नहीं लूंगा, बोला भाई 5 रुपया में ले लो, तो 5 रुपया दे के ले लिया और बेच रहा था, वो 5 रुपया लेकर अपना जो रोटी बोटी खाया, बाकी तो राजा से कुछ नहीं मिला आज। आप जितने खरीदने वाले आते थे तरबूज देखते थे, बड़ा बढ़िया तरबूज है, लेकिन जब देखते थे फटा है बता है उसको बोल रहे बड़ा तरबूज फटा हुआ है बेकार, कोई नहीं लिए। बेचते बेचते बेचारा फल वाला रात को 8 बज गया अभी तक नहीं बच रहा, बोले बेकार 5 रुपया मेरा लक्ष्मी गया, मैं सोचा मेरा 9% नो लक्ष्मी हो जाएगा, ये तो हो नहीं रहा है। तो वो जो साधु बेचारा, वो बेचारा ढूंढते फिर रहा है पूरा राज्य में, कोई उसको नहीं दे रहा है, देखने से कबाड़ बंद करते, राजा ने मना किया। कुछ ऐसे बेचारे सज्जन थे, बोलते बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति है, भगवान कितना भरोसा है, बदमाश राजा उनको दंड दे रहा है, तो उनको पीछे दरवाजे से बुला करके उसको 1-1 रुपया देते थे, बोला देखो कोई 8 आना कोई 25 पैसा कोई 1 रुपया देते थे। पूरा शाम तक उन्होंने प्रयास करते करते भजन करते करते 5 ही रुपया इकट्ठा कर पाया था, वो कोई नहीं दे रहे थे उसको इधर उधर करके। तो लास्ट में आया, बोला 5 रुपये में क्या होगा, आज भला हार कर लेते हैं, ठाकुर जी जैसे मेरा इच्छा करें, ऊपर वाला जैसे व्यवस्था किया। तो उसके पास है, बोला भाई फल दे दो ना क्या है, एक तरबूज है ले, पांच रुपया दे दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, इतना बड़ा, इतना बड़ा ना, देखो थोड़ा कमी है मुझे फिर वापस नहीं देना, थोड़ा फटा है उसमें, लेकिन अरे चला फटा, मुझे तो भी फट फट कर खाना था उसका, ले लो पांच, देकर उसको ले लिया, लेकर बेचारा घर में आपने फाड़ा, फाड़ के देख चक चक सोने का मोहर, बोले ये क्या भाई, आप भोग लगाया अब खाया तो एक क्लास का तरबूज, राजा का दिया होता रॉयल क्लास का तरबूज था, खूब मजा से खाया, आप फलाहार किया खूब मजा से, और सोने का मोहर रखा, उसको विश्वास नहीं हो रहा था तरबूज के अंदर सोना मोहर कैसा है। दूसरे दिन सुबह अब सोनारी के पास गया, सोने का तुमने देखा, वो तो बोला 100% 22 कैरेट का है, खुश हो गया, लाके रखा। अब दूसरे दिन वही हाल है, वही ढूंढते ढूंढते 5 रुपया इकट्ठा कर पाता है, वही फल वाले के पास जाए, वही फटे हुआ तरबूज, क्योंकि प्रतिदिन राजा उनको देता था एक सोने का मोहर डाल करके तरबूज, और वो प्रतिदिन उनको खूब गाली देता था, दे करके लाकर उसी को बेचता था 5 रुपया में, तो दे कर 5 रुपया लेकर उस गाली देकर डेली डेली 15 दिन यही काम चला। राजा सोचता था मैं तो उसको तरबूज भी देता हूँ बड़ा, इतना अच्छे क्वालिटी का खूब खाता होगा, सोना भी मिलता होगा, उसको तो कोई कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए राजा देखता 15 दिन के बाद दोनों को मिला, दोनों को बुलाया तो जो फकीर था तो सूख गया था, इतने गाली दे रहा था उसको, क्या राजा डेली डेली तरबूज फटाफा दे रहा है, वो बेचारा 5-5 रुपए बेच करके मैं क्या करूं, और वो साधु तो लाले लाल, ऑलरेडी पास कर लिया था घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए व्यवस्था करता, 15 गोल्ड मोहर भाई, करोड़ों का संपत्ति, और तो अपना कह राजा देख कर समझे इसी क्या, मैं तो उसको पूरा राज्य मना कर दिया कुछ नहीं देने के लिए, मैं भी नहीं दिया उसको, मैं दे रहा हूँ छिपा करके, ये इसे इसी के रूप धन का बिल्कुल बदले हुए हैं। उनको पूछा भाई क्या आ रहे हो, बिल्कुल जो देगा सब लोग ला क्या दे, मर रहा है तो क्या मुझे फलाहार दे रहे, अंदर में गाली दे रहा है बाहर से बोल रहा है, दादा बोल रहे मैं तुझे इतना दे रहा हूँ तू क्या कर रहा है तू, मैं तुझे तरबूज ना जनाब तरबूज दे रहे हैं, मैं क्या फलाहार थोड़ी करता हूँ, हम तो आपके धर्म के हैं, व्रत नियम है, कहते अरे तरबूज नहीं खाता ना, ना तरबूज क्या, वो भी फिर फटा हुआ तरबूज, अरे बदमाश फटा हुआ, मैं सुना मोहर डाल के देता था उसमें, बोला नहीं उसको, तू फटा हुआ तरबूज क्या करता था, ना मैं बेच देता था उसको बेच देता था, किसको बेचता था ना, रोड में जो फल वाला था उसको बेच देता था, अरे मैं प्रयास करके उनको हेल्प करने के लिए अंडर हैंड में सोने का मोहर देता हूँ, तरबूज ये बदमाश नहीं उनको नहीं मिल रहा है, कहां जा रहा है मेरा सुना मोहर, उसको बोला इन्वेस्टिगेशन करूंगा, बोला कौन फल वाला उसका एड्रेस ना तुमको बुलाओ, उनको बुला भेजा, फिर उनको पूछा भाई तुम इतने खूब खुशी हो क्या बात है, पूछा ना मैं तो भाई आप तो दुनिया में मना कर दिया मुझे कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा था, बड़े मुश्किल से इधर उधर करके 5 रुपया इकट्ठा कर पाता था, ना फिर 5 रुपया क्या होता, ना 5 रुपया वो बोलता 5 रुपया मुझे मिलता था क्या होगा 5 रुपया में, मुझे भी दे रहा था फटा तरबूज 5 रुपया, मेरे भी हाल खराब हो चुका है, बोला 5 रुपया में मैं तो एक फटा तरबूज खरीदता था, वो इसी फल कहां से खरीदता था ना, वो फल वाले से खरीदता था मैंने, और इतना बढ़िया तरबूज क्या बताऊं, हमारा देश में ऐसा तरबूज नहीं मिलता, खूब खाता था डंट करके, और उसके अंदर एक सोने की मोहर मिलता था, वाह मैंने तुझे दंड देने के लिए इतने प्लान किया, वो मेरा सोना मोहर तुरे पास से पहुंचता था कैसे, वो फल वाला को बोला भाई तू मना न मैं क्या करूं, मुझे तो 5 रुपया करके हम लोग से खरीद लिया, लेकिन वो भी शाम तक नहीं बेचता था, तो ये महात्मा आकर पहुंचते थे डेली, वो 5 रुपया जा करके ले जाते थे, और प्रतिदिन में वो देते थे, मैं उनको बेच देता था 5 रुपया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वह सब दौला जी समझ गए, मान गया बल मान गया, जो देगा ऊपर वाला क्या देगा, जो वो देगा मैं दे दे कर भी हार गया, मैं वो मर रहा है मैं मर रहा हूँ तुझे से मिलना जाकर, ये उपाय पूर्वदर्शी, जब भगवान ने जो विधि किए हैं अगर हम उनके ऊपर पूर्ण विश्वास भरोसा रखकर करें तो ठीक ठीक से काम बनेगा, आप सुखी होंगे प्रसन्न। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
किस्म का।